श्लोक है, वंदना में श्लोक उनका है। सुदुस्त सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आद्य बचसा युद्धाण्यम माया मृगम दैतक्षित अन्न भावक वंदे महापुरुष ते। मैं उस महाप्रभु की वंदना करता हूं, मैं उस महाप्रभु की वंदना करता हूं। कृष्ण को जगति कृष्ण है उनको महापुरुष नहीं कहा, महाप्रभु नहीं कहा, राम को भी महाप्रभु नहीं कहा गया है। ये तो चैतन्य महाप्रभु जी के लिए ही आप लोग सतत को देखते हैं जिस ब्रह्मांड में समस्त महाप्रभु के राम से वो दिखता है। तो वंदे महापुरुष महाप्रभु की मैं वंदना करता हूं, वो कहते हैं तत्व मैंने छोड़ करके, क्या छोड़ा, सुदुस्त सुरक्षित राज्य लक्ष्मी। देवता प्रभु जी राज्य राज्य को नहीं छोड़ पाते, ऐसे सुंदर राज्य अथवा विष्णु प्रिया की जो इतनी सुंदरी है, इतनी रूपोती और गुणवती है, जो उस राज्य की लक्ष्मी रूपी जो विष्णु प्रिया जी थोड़े दिन विदाता हुआ था उनको भी, और धर्मिष्ठ आद्य बचसा जगदादारण्यम परम धर्मिष्ठ हैं, बचपन से ही सालग्राम की सेवा करते हैं, हर नाम कीर्तन करते हैं, कल्पी का ये सबसे कराते हैं, कहते जाओ भिक्षा मांग लाओ, भिक्षा क्या मांगना, कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम का दान करो, कृष्ण का कीर्तन करो, ये सब भिक्षा मांग सबसे करते हैं और सबसे कराते हैं। पर्व धर्म अंत में तो संन्यास लेकर के छोड़ करके चले गए और विश्व को अपने प्रेम में प्लावित कर दिया। जो उनके सामने आया उसको प्रेम में पागल बना दिया, मनुष्यों की तो बात क्या, स्त्रियों की तो बात क्या, बाघ भालू हिरण सर्प जंगल में जो सामने मिला उसको प्रेम में एकदम पिछला, सब भी ऐसे करते थे कृष्ण कृष्ण कर, हाथी भी घुटने टेक करके कृष्ण कृष्ण करें, बाघ भालू सर्प हिरण एक साथ में बकरी भेड़ सब एक हाथ में सबको पानी पिला दिया, कृष्ण नाम में मत किया। ऐसे ये हैं धर्मनिष्ठ हैं, आद्य बद्धता जगदादारण्यम, आद्य बद्धता माने एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को आद्य भी कहते हैं, जब महाप्रभु जी थे शिवास जी के अंगन में बहुत से लोग देखना चाहते थे कि कीर्तन कैसे कर, किंतु वो कीर्तन होता घर बंद कर अनाधिकारी लोग ना प्रवेश कर, वो ब्राह्मण बहुत देखना चाहता था कीर्तन उसमें सम्मिलित होना चाहता था, रात भर खड़ा रहा किंतु दरवाजा नहीं खुला। अजी भाई देखो मैं रात भर खड़ा रहा और कीर्तन में मैं सम्मिलित नहीं होता था, इसे मैं अभिसंपात करता हूं, श्राप देता हूं कि तुम्हारा दुर्ग काशु तुम्हारा स्त्री पुत्र और ये सब का जो सुख है वो समाप्त हो जाए। महाप्रभु जी ने उसके बचनों को अपने सिरोधार देकर के जगदादारण्यम सबको छोड़ करके संन्यास लेकर के जगन्नाथ के लिए चले गए। माया मृगम दैतक्षित अन्न भावक, संसार के जी माया की मृग के पीछे पीछे जो दौड़ रहे हैं ना, जो अपना नहीं है उसको अपना करते हैं, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी भाग्या, कौन किसका कोई संबंध, सब तो देखते हैं अकेले आते हैं अकेले चले जाते हैं, दो दिन के लिए हम संबंध है काम करके, और माया मृग, माया मृग मने जो नहीं है उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, ऐसे ये जीव हैं माया में मुग्ध हैं, अपना भला कल्याण नहीं जानते, जो माया में इधर उधर उसके पीछे पीछे ये अंधधावक दौड़ रहे, किस लिए, ये बेचारे बड़े दुखी हैं, कोटि कोटि जन्म तक हमको भूल करके संसार में माया की तरफ में भाग रहे हैं, इनका कैसे कल्याण हो, इसलिए कहते हैं तुम कहो कृष्ण 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 कहो,
उनके पुस्तकार आ सके, उनको उधर में लौट आते हैं कितने बड़े दयालु हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं, महाप्रभु जी हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। कुछ लोग इसी श्लोक का अर्थ करते हैं, ये राम अवतार ने राज्य को छोड़ दिया और सीता देवी को लेकर के गए, और सीता देवी के कहने से पिताजी के आदेश से बनने चले गए, राज्य छोड़ दिया, बंदोदानों को छोड़ दिए, 14 वर्ष तक भटकते रहे। इसके बाद में लौटे, किंतु महाप्रभु जी लौटे नहीं, इसलिए महाप्रभु के प्रति इस श्लोक की अधिक प्राप्त है।
और राम जी सीताजी राज्य लक्ष्मी चले गए।
दूसरी बात, लक्ष्मी जी को छोड़ा कहां, स्त्री को छोड़ा, स्त्री को तो साथ में ले गए, इसलिए लक्ष्मी अपनी स्त्री को छोड़ दिया, ये तो वहां पर होगा नहीं। ये अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को तो अपने साथ में ले गए, इसलिए वो अर्थ भी नहीं होगा। और माया मृत के पीछे दौड़े अपने स्त्री के कारण से किसी पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। दूसरी बात, कलयुग में इनका जन्म हुआ कि नहीं, ये भी देखना है, और कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती है कि नहीं, इसलिए राम के प्रति लागू। कुछ लोग कृष्ण के लिए अर्थ लगाते हैं, कृष्ण वर्णन जो कृष्ण दिन का वर्ण है, और बड़ी उज्ज्वल कांति है, जैसे मूंगे मोती के का वो झलकता है ना, उसकी प्रभा वैसे झलकते हैं, ये भी अर्थ नहीं होता। क्यों, उन्होंने अपनी पत्नी कहां छोड़ा, राज्य भी कहां छोड़ा, मथुरा में वृंदावन में राज्य नहीं था, क्योंकि अब वहां पर द्वारका में जाकर के क्या किया, वहां पर परिखारी द्वारकाधीश बन गए, पृथ्वी के समस्त लोगों को भगवान उनको लेने लगे, कहा तो वो राज्य कहां छोड़ा, इसलिए कृष्ण के प्रति भी नहीं होगा। आज जो बच्चा कौन से पिता के आदेश से या ब्राह्मण के आदेश से बनने गए, कब गए कृष्ण, इसलिए कृष्ण के प्रति भी नहीं होगा। कृष्ण इस जब सब प्रकार से विचार करते हैं, तो भागवत के टीकाकार ने विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी को स्वामी किया, जो सबने एक साथ में विचार करके कहा ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ही ये महाबंदे महापुरुष। यहां पर कलयुग में महाप्रभु की उपासना करना पड़ता है, कैसे उपासना करेंगे, फूल चंदन चित्त को एकाग्र करेंगे, कलयुग में चित्त एकाग्र करना, वायु एव शब्द स्थितम, वायु सभी बड़ा सकते हैं, वायु को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, मन को एकाग्र नहीं कर सकते, यज्ञ करेंगे ध्यान तो होगा, यज्ञ करेंगे हमको एक छटा कोई शुद्ध गाय का दिन ले आए, इस समय मिलेगा अजहां गैया दूर करके ले आएंगे, अरे तेरी गैया तो इधर उधर जाती है, कुछ खास तो मिलती नहीं, इसलिए बच्चे का शक्ति उसमें लगा करके फेंक देती है गैया का, शुद्ध मिलेगा, शुद्ध मिलना बड़ा भारी कठिन, यज्ञ कराएंगे ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण देखेंगे इसमें कितना अर्थ देते हैं, आजकल तो भागवत के लिए भी देखते हैं, यदि देखेंगे जैसे ये खर्च नहीं करेगा तो भागवत नहीं बांटेंगे, पहले ठीक कर लेंगे, भाई तुम्हारे यहां हम भागवत बांटेंगे, हमको प्रणाली में अंदर का 5000 रुपये देंगे और सोने के सिंहासन पर भागवत देना और सब ठीक कर देंगे, हमारे साथ में ये रहने वाले हैं उनके लिए भी कुछ देना, ये भी एक व्यवसाय हो गया है। तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण काम मिलेंगे, वो पहले देखेंगे कि प्रणामी के हाथ में कितना पैसा आता है, तब तक वो कुछ करें, और जानने वाले भी यज्ञ कराने वाले भी बहुत कम है, बहुत कम, और है ही कोई स्मार्ट भगवान की कृति के लिए, भगवान ने हमारा चित्त लगा दिया है, और अर्चन करेंगे, अर्चन भी कभी काल में अब संभव नहीं, जहां कहां सुनेंगे मूर्तियां चोरी जा रही हैं, आप मूर्ति सोने की बनाकर कर रखी हो तो चोरी लेकर के चला, अभी महाबल में हम लोगों के संप्रदाय की सिद्धि ग्रति उनको तोड़ दिया, राजनीतिक ये सब मिलजुल कर आशंका है कि कहां कहां तस्करी हो रही है, कितने सुंदर 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 देखों को इधर उधर अमेरिका के म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में वो सब जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए मुक्ति का दाम। आजकल वो पत्थर हो गए, कल युग में इसलिए तो भी जा रहे, कल युग में सब उसका जो जैसा है, जहां पर है, जिस स्थिति में है, स्त्री पुरुष जो कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नहीं लिखा हो, दलित हो, धनी हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई, सभी लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। इसे जहां कहीं जाकर के भगवान का हम नाम कर सकते हैं, वही उनकी आराम, जहां पर जिस रूप में है, कभी का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस ये जहां कर दिया उनकी आराधना। पर स्नान किया है कि नहीं है वही देखने, पवित्र है कि नहीं यही देखने, ऐसा हनुमान जी कहीं घूम रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक तेरी को समय नहीं, वो पास प्रति करते समय में हम राम राम कर रहा है, हनुमान जी ने 1,00,000 जमाई, उसका कुछ नहीं हुआ, अजय हनुमारा तो रावण गिर गया, दिव्या खा गया, और कुंभकर्ण को मारा वो भी गिर गया, हमारे मुक्के को और पैर के लाख को तो उतारने वाला है, और ये तो कुछ नहीं है, क्या बात, चिंतित रहे। शाम को जब रामचंद्र जी के पास में गए तो रामचंद्र जी पलंग पर सो गए, ऊहा कर प्रभु आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो हमने कभी नहीं देखा, तो तुमने ही लाख मारी और तुम पूछ रहे थे क्यों ऐसा, तो हमने प्रभु आपको कब लत मारी, और वो जो नाम कर रहा था उस समय मैं तो खुद ही नाम हूं, तो उसको वो नाम कर रहा था उसके उस समय सियांग में मैं प्रवेश किया हुआ था, इसलिए जब तुमने मारा तो वो हमको लगा उसको लगा, और उन्होंने समझा नाम और नामी दोनों एक है, अभिन्न है, इसलिए जब नाम हो रहा है उसमें भगवान ने ऐसा समझना चाहिए, सौ साल रूप में कलयुग का यही उपासना की पद्धति है, इसलिए इसी उपासना पद्धति से चैतन्य महाप्रभु ने जगत में ये उपासना पद्धति दी, जो जहां जिस रूप में है बस कृष्ण का कीर्तन करे, भगवान का कीर्तन। आज विश्व में सर्वत्र आप लोग देखते हैं, हम लोगों ने तो कुछ श्रद्धा पहुंची है, हम लोगों तो बाल छट रहे हैं, स्त्रियों के भी लड़कियों के भी, जो लड़की अपना बाल नहीं कटा लेती वो सुंदर खरी गई, और क्रॉप 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 में क्या होता है, मेहनत मेहनत क्रॉप क्रॉप नहीं करें तो होगा नहीं, और कहां इंग्लैंड अमेरिका की सब लड़कियां और सुंदरी सुंदरी यहां के जैसे कपड़े पहन, धोती पहनना सीख जानते, हमारे यहां केवल धोती नहीं पहन सकते, जो भागवत जो करा रहे हैं वो भी धोती नहीं पहन सकते, हमने कहा कि तब उनको लांग ही नहीं लगाने जाए, और वहां के साथ मोटे कपड़े पहन करके कुत्ता लगा टूटी लगा सकते, गले में माला लगाते हैं, वहां की देखिए कितनी खनी खनी सर, यहां पर किसी को कहेंगे गले में माला लगाओ तो लज्जा के मारे में वो नहीं लगाएंगे, और घर वाले उसको घर में नहीं जाने देंगे, और कहा बच्चा के कुछ भी दो लोग आकर के हाथ उठा करके स्त्री पुरुष हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल, इसलिए हम लोग कलयुग में संकीर्तन के द्वारा में चैतन्य महापुरुष की आराधना करें, वंदे महापुरुष से इस प्रकार से प्रभाजन ऋषि या ऋषि ने महाराज को ये सब बातें बताएं, उसके बाद में जो कथा होगी आप लोग यहां पर बहुत प्रणाम। अभी उन्होंने श्रीमद् भागवत से दत्तात्रेय जी के संबंध में बतलाया, जिन्होंने 24 गुरु रखी है, 24 शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु तो एक ही होता है, उन्होंने शिक्षा गुरु, उन्होंने कपोत और कपोती, कबूतर और कबूतरी को भी गुरु बनाया, कैसे बनाया इसका उपाख्यान श्रीमद् भागवत में दिया गया, उसको मैं पूरे से संक्षेप में बतलाता। एक कबूतर था, बड़े सुंदर वन में वो रहता था, पासी में सुंदर नदी बह रही, हरा भरा मैदान, सुंदर सुंदर वृक्ष, बाई चांस भगवती इच्छा से उसको एक बड़ी सुंदरी कबूतरी मिल गई और कबूतरी के साथ में उसी पेड़ पर अपना उसने वो बना लिया घोंसला घोंसला बनाया। बड़े प्रेम से रहते, दिन में साथ रहते, रात में साथ रहते, प्रेम भरी बातें करते, कैसे हमारी शादी हुई और अपनी अपनी बातों की बड़े प्रेम से बतलाते। कुछ दिनों के बाद में उनके बच्चे हुए, काफी बच्चे हो गए, बच्चों के पंख जमे, जमने पर अपने पंख से जब अपने माता पिता के पंख स्पर्श करते हैं तो माता पिता अत्यंत आनंद में भर जाते हैं। जब वो पूजन करने लगते हैं गोकापी की, तो बच्चों की बोली सुन करके तितली बड़े प्रसन्न होते हैं। जब वो चलना थोड़ा सा उड़ना सीखते हैं, थोड़े से दो एक पैर उड़ करके फिर गिर जाते हैं, माता पिता अपने अंक में दे लेते हैं। बड़े प्रेम के साथ में ये लोग चल रहे, चलते चलते बच्चे जब कुछ थोड़े से बड़े हुए तो ये लोग उनके खाने के लिए कोमल कोमल चीजें को ढूंढने के लिए नदी के किनारे बन में चले गए। वो ढूंढ रहे थे, आज कुछ विलंब हो गया, इतने में एक काला मुस्तंड बह लिया वहां पर। देखा जी वाह, बड़े सुंदर सुंदर कबूतर के बच्चे यहां पर घूम रहे हैं चारों तरफ में। उसके मुख से लाख टपकने लग गया और सोचा कि इनको अपने जाल में फंसा ले। बस झट उसने जाल वहां पर बिछा दिया और वो मासूम बच्चे कुछ समझते नहीं है, पिता माता रहते जैसे बूढ़े चूहे जाल में फंसते नहीं है, नए नए बच्चे फंस जाते हैं वो जानते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे उनके जाल में फंस गए। अब तो ये शिशक में गए रोने लगे। थोड़े देर के बाद में मैया पिता आए, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे जाल में पड़े हुए हैं। माता पिता को देख करके पहले तो रो ही रहे थे और खूब जोर से रोना आरंभ कर दिया। मैया को पागल हो गई, ये बच्चे तो अब मरे तो मैं ही गिरी तरह करके क्या करूं। बस हाय हाय करती हुई बच्चों के पास में चली गई और वो भी जाल के अंदर में फंस गए। पति ने देखा हम लोग सारा जीवन एक साथ में रहे, प्रेम के साथ में रहे, सुख दुख में एक साथ में रहे, बच्चों का लालन पालन किया, हमारे बच्चे अब मर रहे, एक तरह से मर ही गए हैं और ये हमारी पत्नी भी प्यारी पत्नी वो भी फंस गई उसमें, और मैं रहकर के क्या करूंगा। अत्यंत विलाप करता हुआ वो भी इसमें कुछ पड़ा और भी जाल के अंदर में आपत्त हो गया। बैठ या ताली बजाता हुआ मुस्कुराता हुआ हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया, सबको उस जाल में आबद्ध करके दो एक बार ऐसे उठा पटक की और वो सब बुरी पर मर गए और उनको लेकर के प्रेम से घर में चला गया आग में भून करके। और उन्हें कहते हैं कि मैंने इस कबूतर को अपना गुरु बनाया और कबूतरी को संसार में भजन करने के लिए आए। और ऐसे ही पत्नी के प्रेम में, बच्चों के स्नेह में, उनके पालन पोषण करने में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। और देखते देखते क्या होता है, आप लोग संसार को देखते ही हैं। अब मैं इस संसार में नहीं फंसूंगा, मैं इन सबसे अपना कर्तव्य जो हमारा है मूल कर्तव्य वो भगवान का भजन करेंगे और इनका ऊपर से जैसा है हमारा कर्तव्य हम पालन करेंगे, किंतु उसमें आसक्त होकर के कबूतर जैसे मूर्ख जैसे अपने जीवन को हम बर्बाद करें। हमारा कृष्ण से संबंध है, पिल्लों के लिए संबंध हमारा सामयिक है। यदि कोई भगवान का भजन करता है सब ऋणों से मुक्त हो जाता है, वो किसी कार्य में नहीं रहता है। इसलिए मैं इस कबूतर को अपना गुरु बना करके ये सीखा कि अब संसार में फंसना नहीं, हमको भगवान का भजन करना है, ऐसा समझ करके हम लोग भी कबूतर को अपना गुरु बना ले। कबूतर को क्यों गुरु बनाए, हम लोग तो दत्तात्रेय जी को ही गुरु बना ले। और बना करके उन्होंने जहां जहां पर से जो शिक्षाएं दी थी हम उन शिक्षाओं को ला करके भगवान के भजन कर दो। अब आगे की कथा आप लोग सब
उन्होंने 9 दिनों तक भगवान की बड़ी ललित कथा अवकाश आगे भी हम लोग बीच बीच में ऐसे अवसर आए आप लोग सभी उसी तरह आकर के कल सदर जैसे 7 बजे कथा आरंभ होती है वैसे यहाँ कथा आरंभ होगी। थोड़ी देर में कथा प्रसंग समाप्त होने पर हम सभी लोग मिलकर के भागवत का पूजा कर्तन करेंगे। वैष्णवों का हम लोग सम्मान करेंगे और ठाकुर जी की पूजा के बाद में फिर श्रीमद् भागवत जहां से आए थे वहां पर हम पाटनी में हम श्रीमद् भागवत को ले गए। हवन इत्यादि होगा ब्राह्मण वैष्णव सब लोगों को जैसा होगा महाप्रसाद से उनकी सेवा। आज मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। साधारण लोग से वो लोग समझते हैं कि बहेलिया ने कृष्ण को मारा और वो बाण उनको लग गया और भगवान मर गए। यहां तक कि प्रभात क्षेत्र में लोग अभी जाने पर दिखलाते हैं कि भगवान को यहीं पर बाण लगा और यहीं पर मर गए और उनका यहीं पर श्राप इत्यादि हुआ और अंतिम दाह संस्कार हुआ ये भी दिखलाते हैं। किंतु ये सब बातें गलत हैं। सुनंद शिवानंद जी ने बतलाया काल्य का पीस उनको कुछ न कर सका कालकूट पीस हजम कर गए द्रोण भीष्म पितामह का वो बाण कालकूट बाण भी कुछ नहीं कर सका काल्य दा में कूद पड़े गोवर्धन को उठा लिया भांडीर बन में आप खा ली जमुना के किनारे भी आग खा ली और उनका कुछ नहीं हुआ। जम लोग को पा करके सिद्ध लोग से उन बच्चों को लेकर के लौटाए अपने गुरु माता को उन्होंने दिया अपनी मैया को दिया और उम्र जाने किसी एक पहलिए के बाण से यह संभव पर नहीं। ये एक मौसम लीला इत्यादि और ये सब लीलाएं भगवान की एक योग माया के प्रभाव से केवल दिखलाने के लिए मैक्समेरिज्म के समान कैसे है। श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर लिखा गया जिस समय भगवान जा रहे थे मनुष्य ने कुछ नहीं देखा उन्होंने भगवान के शरीर के समान ही एक शरीर को देखा पड़ा देवताओं ने देखा जैसे तेज जा रहा है और ब्रह्मासन का नर प्रवृत्ति लोगों ने देखा कि कृष्ण साक्षात अपने परिजनों से परिवेषित होकर के वो लोग वैकुंठ धाम में जा रहे इसलिए कृष्ण का न तो वैसा कोई मरण हुआ न तीर्थंश लगा न कुछ लगा वो सशरीर ही जैसे आए थे वैसे चले गए दुर्लभ थे उनको कोई साधारण शरीर वाले लोग आंखों वाले लोग उन्हें मिल गए। उसी के लिए श्रीमद् भागवत की टीका में ये कहते हैं इन श्लोकों की यदि एक छोटा सा नट एक ऐसी नटबाजी कर लेता है जिसको देखकर के हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं तो भगवान तो समस्त मायाओं के भी मायापति हैं। एक समय की बात है एक नट आया नट माने खेल दिखलाने वाला उसके साथ में उसकी पत्नी युवती पत्नी भी आई और दो किशोर लड़के 9-10 वर्ष के एक 9-10 वर्ष का बड़े सुंदर राजा के दरबार में पहुंचे और बोले थे महाराज यदि आदेश हो तो हम लोग कुछ खेल दिखलाएं। ठीक है दिखलाओ उन्होंने दो बांस गाड़ करके उस पर रस्सी टांग दी और नटनी को
सिर पर एक घड़ा, उसके ऊपर में एक घड़ा, उसके ऊपर में एक घड़ा, तीन चार घड़ा रख, और वो एक बांस की लठ लेकर अपने हाथ में ऐसे रस्सी के सहारे ऊपर में चढ़ गई, और चढ़ करके वो सुंदर रूप से नाचने लगे। लोग देख करके बड़े आनंद, ऐसा सुंदर नृत्य किया जो कभी लचक जाती इधर, कभी इधर लचक जाती, कभी प्रदीप लेकर के नाचने लगती, कभी सिर को टेढ़ा कर देती, किंतु बैलेंस ठीक रहा। देख करके आश्चर्य हो गए। जब वो नीचे उतरी, रानी ने अपना एक सोने का हाथ उसके गले में डाल दिया। जब डाल दिया तो उसके दोनों लड़के दोनों तरफ चल रहे थे, मैया मुझे दे, मैया मुझे दे। मैया ने वो हाथ निकाल लिया और बीच में रख लिया, दोनों परस्पर खींचने लगे। मैया वहां से थोड़ी सी हट गई, अब दोनों परस्पर लड़ने लगे, वो अपनी तरफ खींच रहा वो अपनी। जब दोनों ने देखा जैसे ये हमारे हाथ में नहीं आ रहा, बस कमर से मैन से तलवार उन्होंने एक साथ उठाई और छपाक से उसने उसके ऊपर मारा, उसने दोनों के गले ऊपर करके। नटनी जो थी उसने पुकारी, हमारे दोनों लड़के मर गए एक साथ में, और मैं जी करके क्या करूं। देखते देखते ही लोगों के निवारण करने के पहले ही उसने तलवार उठाया और अपना गला काट करके दिया। नटनी, हमारी पत्नी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, और मैं पूरी तरह करके बस उठाया तलवार उसने भी। लोग देखते रह गए, बड़ी घृणा लोगों को, ये उत्सव हुआ या देख नाच हम लोग देख रहे, क्या हो गया। लोग वहां से उठे, रानी भी बड़ी दुखी, अपने महल में चली गई, राजा महल में चले गए। बड़े लोग दुखी थे। दूसरे दिन राजा के यहां एक पत्र आया, महाराज हमने पहला जो खेल दिखलाया उसको तो आपने पुरस्कार दिया, और जो अंतिम खेल हम लोगों ने दिखलाई उसका आपने कुछ भी पुरस्कार दिया है। हम चारों जैसे के तैसे बचे हुए हैं, कोई भी मरा नहीं है। यदि विश्वास नहीं हो तो हमारा पास ही घर है, हमारे घर में आकर के पधारिए और हमको देखिए, किंतु पुरस्कार लाना भूलेंगे मत। देखकर के बड़ा हमको भी विस्मय हुआ, साथ ही साथ में राजा रानी और सब लोग, उनके मंत्री पंत्री सब लोग वहां पर उसके घर गए। देखा जी मुस्कुराता हुआ मंडप और उसकी जुआ स्त्री हस्ती हाथों में माला लिए हुए महाराज का अभिनंदन और रानी का अभिनंदन। महाराज हमारा पुरस्कार है, देखिए हमारे ये दोनों बच्चे हैं और हम लोग। साधारण एक नट ऐसा कर सकता है, मन कैसे है। अरे और की तो बात यही, हमारे मठ के पास में ही आज से कल 8-10 वर्ष पहले बंगाल का कोई एक ऋषि राजा कौन आया था, आया था, उसने हजारों लोगों के सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब लोग एक बच्चे को काट करके और डाल दिया बक्से में, और उसमें 3-4-5 ताले बड़े बड़े लगा दिए, और एसपी को उसने दे दिया, ये आप रखिए, सब लोग देख रहे हैं, भर दिया। इसके बाद में अच्छा आप लोग बैठिए, कहा जैसे बेटा इधर आ जा, इधर आ जा, और बक्सा बंद है सब कुछ, और दूसरे से पिताजी में इधर आया, इधर आया, और कहते उधर से वही कटा हुआ जिसका मुंड, और वो अभी हाल में कलकत्ते में वहां पर 22 सराय और सब लोग वहां पर उपस्थित थे। अंग्रेजों का जमाना, पीसी राय था, उसने कहा कि मैं खेल दिखलाऊंगा, सब लोग एकत्रित हुए, 4 बजे का समय दिया, 4 बजे तबला मैं भी आऊंगा। 4 बज गया, 4:30 बज गया, 5, अंग्रेज जो तो समय के बड़े कंक्चुअल होते हैं, जब 5 है तो उनको बड़ा आएगा, तो हम उसे पहले तो पीट करके और जेल में बंद कर। सभी लोग बड़े थे, उस पर क्रोधित हुए थे। 5 बजे के समय पान खाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ऐसे घड़ी देखता हुआ वो आया। देखते ही एसपी और जितने थे उसके ऊपर में बिगड़े। 4 बजे की बात, आप 8 बजे आ रहे हैं, कल इसको जेल में बंद करो। कहिए हजूर हमको जेल में तो जरूर बंद करेंगे, आप वो कर सकते हैं, किंतु अपनी घड़ी में जरा देखिए कि कितना बजे। सब लोगों ने घड़ी पे देखा, ठीक 4 बजा है। यदि एक असाधारण जादू जानने वाला ऐसा कर सकता है और प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु करो तो बाण लगता है और वो तो ये उनका शरीर का पाप होता है। ये सब भगवान की ऐसे ही माया के प्रभाव से दिखला रहे, इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचो जब भगवान को बाण लग गया तो मर गए और उनका शरीर बदल गया, उनका दाह संस्कार, ऐसा करना अपराध होता है। इसलिए भगवान चिन्ह है, वो जिस शरीर को लेकर के आते हैं उनका शरीर नित्य है, अभी भी है, अंत में भी रहेगा, पीछे भी रहेगा, सब समय उनका वर्तमान। कृष्ण का ये बंशीधारी रूप, कृष्ण का यह सुंदर रूप सब समय है और इसलिए उनको ऐसा अनित्य मत समझेंगे। वैसे ही जैसे कृष्ण का वैसे वैष्णव का भी होता है शरीर, उनको साधारण प्राकृतिक रूप में मत समझेंगे, उन लोगों का भी शरीर नित्य होता है, हमारे कल्याण के लिए आते हैं और तरह तरह के इधर उधर से नटबाजी कर करके हमें उपदेश दे करके चले जाते हैं, इसलिए उनके चरणों में भी अपराध नहीं होना चाहिए। परीक्षित महाराज भी मरे नहीं, ऐसा मत समझे ये मर गए। परीक्षित महाराज जी को जिसने कृष्ण ने खिलाया वो उनको अपनी माता के गोद उनके गर्भ में उनकी रक्षा की और ऐसी अमृतमयी कथाओं को सुना और वो मर जाएंगे, हम तो तर जाएंगे वो मर जाएंगे, या हो सकता है ऐसा कभी नहीं। इसलिए ऐसा मत समझेंगे, ये तो उनका एक कौशल था श्रीमद भागवत को प्रकाश करने के लिए, जो लोगों का इसी से सुनकर के उद्धार होगा। इसलिए परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से दो आंगुल बड़े ही समझ लिए, कम मत समझेंगे। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की गोदी में कभी खेले ये सौभाग्य नहीं हुआ। कृष्ण के अर्जुन कलबतला में जब उनके भग्नी पति बने, सुखदेव गोस्वामी के ये वंश में किसी को ये सौभाग्य मिला, ये सब चीजें। इसलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी परम मुक्त हैं, ये भी परम मुक्त हैं, वो इस प्रकार से माया भाव की राजी दिखला करके और श्रीमद भागवत को रख करके और वो चले, इनके चरणों में हम लोग अपराध न करें। इसलिए भागवत की जो कथा है बस एक सार है, क्या सार है उस सार को मैं बतला रहा हूं। जैसे हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण रचा, 1 करोड़ श्लोक, मनुष्य देवता गंधर्व तीनों लड़ने लग गए। मनुष्य कह जे हमको मिल जाए, देवता लोग कहे मुझको, असुर लोग कहे मैं क्यों मिल जाए। शंकर जी आ गए, लड़ो मत मैं विभाग कर देता हूं, वह तीनों में विभाग किया, 1 करोड़ में 3 विभाग किया,
33 लाख
दे दिया,
1 लाख बचा,
1 लाख बचा, 1 लाख में फिर 33,000 दे दिए,
1,000 बचा,
1,000 बच गया, 1,000 को 3 भाग किया,
333,
1 श्लोक बच गया। 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं, 1-1 चरण दे दिए, अब लास्ट 1 चरण बचा, 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं, 8 अक्षरों को उन्होंने विभाग किया, 2-2 अक्षर दे दिए, बाकी कितने बच गए, 2। कहे आप ये 2 नहीं देंगे, यही कृष्ण कहो या राम कहो। इसलिए समस्त भागवता और सबका सार ये भगवान नाम है, यदि भगवान नाम हो गया तो भागवत हो गया, और यदि भगवान नाम नहीं किया तो भागवत नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐप केवलम कलम नास्ते वर्णते, यही श्रीमद् आज यही पर हम लोग भागवत समाप्त करते हैं। कल इसका बचा हुआ जो सारांश होगा और प्रारंभ से अंतिम तक जो भी लाए होंगे एक विहंगम दृष्टि से हम उसका पठन करेंगे। इसके बाद में सभी लोग हम श्रीमद् भागवत का पूजन करेंगे और ये भागवत कृष्ण स्वरूप है, द्वादश स्तंभ कृष्ण के कैसे अंग हैं ये मान हम लोग उनको
कृष्ण समझ करके इनकी पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे हमें ये बल दें कि इस भक्ति का हम पालन कर सकें और स्वामी भाव सागर को पार करके वृंदावन के कुंजों में राधा कृष्ण की सेवा कर सके, यही प्रार्थना करके हम लोग श्रीमद् भागवत को पंचा कर्म पुनर्च
कृष्ण के चौड़ों में और राज प्राप्त ऐसे कृष्ण भक्ति माए दिवस को बनाया उन स्वभावताओं के महान चरित्र के द्वारा पात्र या अधिकारी वह निर्माण हुआ है ब्रह्मस्कंद है। ब्रह्मस्कंद की कथाकार में ऐसे देखने को मिलता है कि जहां पर बैंक जी ने भक्ति युग समाधि से प्रभु का दर्शन किया, श्रीमद् भागवत रूप पुराण श्रुति का दर्शन किया, उनकी लीलाओं के दर्शन किए, जहां पर जैसे जैसे दर्शन किए तथा पर उन्होंने ग्रंथ के रूप में प्रणायन किया और उन कथाओं में सभी लोग तृप्त थे। जिन कथाओं का श्रवण करने से समस्त प्रकार के शोक मोह वार दुर्मुक्त हो जाता है, इसलिए उन कथाओं में रघुपति द्वितीय स्कंध भागवत में सप्त मुक्ति और कौम मुक्ति का वर्णन किया है, जो कि महाराज परीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने प्रश्न किया था। सात दिन में हमारे मृत्यु होने वाले हैं तो मुझे क्या करना चाहिए और संसार के लोगों को एक न एक दिन जाना होगा और अतः उनके लिए क्या करनीय है, इस प्रश्न के उत्तर में सप्त मुक्ति जरूरत था उद्धार होने का उपाय हरे नाम संकीर्तन और इस प्रकार निर्णय देते ये कहा कि मैंने ही इस समय निर्णय दिया, ये बात नहीं पहले पहले आचार्यों ने महापुरुषों ने सबने इस तरह से निर्णय दिया है कि भगवान की कथाओं का श्रवण उनके लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण कीर्तन और ये रामों का निर्माण लीलाओं का स्मरण इत्यादि प्रकार से प्रयत्न और उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन इस नाम संकीर्तन के द्वारा सभी लोग मुझे ही प्राप्त भगवान को प्राप्त करेंगे। जो मार्ग में बहुत काल तक जो समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करके लोग हम परमात्मा में चित्त स्थिर करते हैं किंतु ब्रह्मलोक पर जाकर के भी उनके मन में शांति नहीं होती, पर उपकार को नहीं किया प्रभु का भजन नहीं किया न कीर्तन किया है, इसलिए उनके मन में शांति नहीं होती। अतः इस योगवती को पार करके भी अत्यंत कल्याण नहीं होता है, इसलिए तृतीय स्कंध में ब्रह्मा जी ने लेते लेते भगवान की आराधना की और भगवान ने उनके हृदय इस वेद ज्ञान को शास्त्र ज्ञान को प्रकाशित किए हैं, उसी तरह से वे वर्णन करते हुए नारद जी को सुनाया और नारद जी ने समस्त संसार में समस्त जीवों को प्रभु की कथा सुनाते हुए भक्ति में प्रवेश कराया। ऐसे ऐसे श्रीमद् भागवत के जो वर्णन है उनका वर्णन आदि द्वितीय स्कंध में हुआ। तृतीय स्कंध में तृतीय व्रत का वर्णन हुआ है जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मचर्यों से युक्त है और जितने पुराण है उनमें केवल पांच लक्षण होते हैं किंतु श्रीमद् भागवत में दसों लक्षण दस प्रकार के लक्षणों का वर्णन हुआ है, इसलिए कहा है कि सृष्टि तृतीय स्कंध में सृष्टि तत्व विषय वर्णन हुआ है जिसमें भगवान तारनाथ विष्णु ने माया से प्रति दृष्टि की और उनके दृष्टि के प्रभाव से चौदह उत्पन्न हुए ब्रह्मांड में एकला भगवान उनके साथ भगवान को सर्वश्रेष्ठ पुरुष जरूर सारे विष्णु ब्रह्मांड के अपना प्रवेश करके सबसे पहले अपने पसीने से पानी को उत्पन्न किया और पानी में शयन करते हुए भगवान ने अपने नाभि से कमल को निकाले और उस कमल में से ब्रह्मा जी हुए और कमल के नाल में चौदह हुआ। इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य में लगाया जो कि प्राणियों के चौदह के प्राणियों की शरीर को देह की सृष्टि की और उसमें परमाणु सारी जीवों को उन शरीरों में प्रवेश कराकर उनको भोग्यता भी प्राप्त कराए। मनुष्य विद्यावत जोगियों में भ्रमण करते हुए इस प्रकार नीचे से कीर्तन से ऊपर को लिया कर्म से शुद्ध होकर वर्णीकरण को कैसे प्राप्त करे कैसे भक्ति की जाए भगवान की आराधना की जाए ये समस्त वर्णन अभी देव के संवाद के द्वारा ही दिखाए हैं। ऐसे ऐसे सृष्टि तत्व वर्णन और अंतर्वैदी किस प्रकार से निकल से उन्नति पाए भगवान के चरणों में पहुंचे ये समस्त वर्णन हुआ। चतुर्थ स्कंद में भी इस संसार में जवाब लेकर धर्म अर्थ का विवर्ग साधन करते हैं यानी मनुष्यों के अंदर में इच्छा विलासा होती है उसके द्वारा उसके साथ मनुष्य अर्थ संग्रह करते हैं अर्थ के द्वारा संसार में प्रवेश कर पुत्र पर पहुंचकर नाते होती और पुत्र परिवार आदि के साथ आत्मीय चरणों के साथ रहते हुए एक दूसरों के प्रति जो कर्तव्य निभाते हैं इस प्रकार कर्तव्य रूप धर्म का पालन करते हैं ये त्रिवर्ग साधन है। इस त्रिवर्ग का साधन करते हुए मनुष्य क्या होता है काम क्रोध रूप मोह मात्र ये सब के अधीन होकर शांति को नहीं प्राप्त होते हैं और झगड़ा विवाद अशांतियां फैल जाती हैं। इसलिए संसार दुखमय अशांति का कारण जान करके इससे निवृत्त हो तथा इस संसार के तत्व को जिस शरीर में अहंकार अनुमान के द्वारा हम डूब जाते हैं उस शरीर के साथ और काम का जरा का रोग व्याधि रोग मोह जरा व्याधि ये सब संसार के जो कुछ है ये सब का कैसे संघर्ष होता है और इसका क्या परिणाम निकलता है ये सब का वर्णन पुनर्य उपाख्यान के द्वारा दिखाया है और इसका वर्णन करते हुए संसार से नवृत्ति मार्ग में ले गए यानी हम लोगों को इससे उपलब्धि की बात इसी प्रकार पंचम स्कंद में श्री भूगोल भूगोल आदि का वर्णन करते हुए ये संसार किस प्रकार है भगवान रवि उपाख्यान के द्वारा भगवान महाराज जी के जीवन चरित्र के साथ में उसको प्रस्तुत किया है। संसार रूपी अटली यानी ये बाण जिस संसार में काम क्रोध लोग मोह के शिकार होकर हम फंस जाते हैं इससे हम निवृत्त हो इसलिए संसार का चित्रण किया है और साथ ही साथ कर्म मार्ग में अन्य कर्म बुराइयां करते हुए किस तरह से समुगति अनुगति को प्राप्त करते हैं नरक आदि का भी वर्णन किया है। सत्र कर्म में भगवान इस संसार में अपने नाम के द्वारा समस्त जीवों की रक्षा करते हैं जो और कोई उपाय नहीं इस संसार में हमें कोई बचाने वाला नहीं है एकमात्र हमारे रक्षक त्राता प्रभु जी है अतए सत्यस्तर भाग्रत में ये सब दिखाए ये असुर होकर के भी विद्यासुर के अंदर कैसी भगवान के प्रति भक्ति कैसी उनकी निष्ठा चित्र महाराज जी का उपाख्यान आदि ये सब के द्वारा दिखाए है। इसी तरह से इस हफ्ता मस्कर व्रत में जी अपने कर्मों के द्वारा भक्तों के कृपा से जैसे महान बन जाते हैं एक नीचे से ऊपर चले जाते हैं महान व्रत बनते हैं और भक्तों के जाम में अपराध हो जाने पर उसकी कैसी अनुमति हो जाती है राशि काम शीर्ष वहां पहले दर्द रामा बन जाते हैं और संसार के लिए बड़े भयानक हो जाते हैं प्रजाओं के प्राणियों के उत्पीड़क हो जाते हैं। इस प्रकार साधु संतों के मंगों के द्वारों में अपराध न हो और उनके कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए महानता को प्राप्त करें मनुष्य जीवन की इसी में सार्थकता है। प्रहलाद उपाख्यान के द्वारा निश्चित देव के जीवन से चरित्र के निश्चित देव के अभिमान के साथ हिरण्यकश्यप के चरित्र के द्वारा ये सब चित्रण किए हैं इस तरह से दिखाया और फिर स्तंभ भागवत में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मंडल पर होते हैं मन के काल में भगवान अवतीर्ण होकर जैसे वैवसत मन के काल भगवान बाहुन देखते इसी प्रकार ऐसे ऐसे भगवान के अवतार सुनो जगत में प्रकटित होते वे अवतरित होकर के स्थानों पर अपार दुर्गा स्थान करते हैं गजदार युद्ध गजदार उद्धार और समुद्र मंथन तथा संसार माया मोहिनी मोहिनी में
भावन सुनने का क्या फल होता है इधर श्रीमद भागवत स्मरण का क्या फल है विभिन्न पुराणों में इससे बतलाए हैं कभी श्रीमद भागवत में जो बतलाया गया वही
आप लोग बातचीत मत कीजिए कोई आप दो मिनट के लिए चुपचाप रहिए कोई मत दो मिनट के लिए
विभिन्न पुराण में उनमें कर्म मैंने परिणाम और काम और साधारण रूप से मोक्ष की बात बतलाई है कैसे रुपया कैसा मिलेगा कैसे संतान पत्नी स्त्री पति कैसे अच्छे मिले और इस संसार में निर्विघ्न रूप में हम लोग कुछ भोग सकें और इसके बाद भी मुक्ति मिल जाए बस इतने को ही सार सुन किंतु भागवत सुनने और इसके महत्व में हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज जी मूल श्रोता है उनको क्या हुआ इसके अतिरिक्त वक्ता ने बहुत वक्ता होने पर विश्वनाथ समर्थ समुद्र चारों कुमार लिए वक्ता है नारद जी श्रोता है अगर नारद जी वक्ता है व्यास जी श्रोता है और व्यास जी ने सुखदेव उसका नहीं पढ़ा है सुखदेव उसका नहीं परीक्षित पीछे से गोपाल ने झुंझकारी को सुनाया इसके बाद में सुख गोस्वामी ने सोना दादी विष्णु को भागवत के काम ये नहीं है जो चाहे इससे डूबले चाहे कुटी ही कौड़ी इससे मांग ले अपना चिंता मांग ले काफी चिंता मन मांग ले सब कुछ देने में समय किंतु इसका ये सब फल नहीं है। यहां तक कि धुंधकारी भूत हो गया था, प्रेत हो गया, उसने भागवत सुना तो उसे भी इसका उद्धार नहीं हुआ, बल्कि वो वैकुंठ तक गया। वैकुंठ में दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, एक प्रेममयी सेवा और एक दुख दूर होकर के कुछ सुख की अनुभूति। इसको भगवत सेवा मिली नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। हम बताएं परीक्षित महाराज जी को क्या हो, परीक्षित महाराज जी विष्णु अंत में 12वें दिन के बाद 12वें दिन तक्षक फूलों में से हार में एक छोटा सा सर्प होकर के उसमें सुखदेव गोस्वामी को पूरा भागवत सुना दिए। उस समय में ये प्रतीक्षा कर रहा था ये सब सुखदेव गोस्वामी जी जाए और इनको मेरे कार्यक्रम कर दे। सुखदेव गोस्वामी जी ने इनको खुद भागवत सुना करके चले गए। इसी बीच में परीक्षित महाराज जी की मैया पार्टी में रहती थी, वो बोली सुखदेव गोस्वामी चले गए तो बड़े विद्वान आदमी है, हमको संस्कृत इत्यादि आती नहीं, हमारा दिमाग भी तुम्हारे जैसा तेज नहीं, ऐसे तुम सरल सहज भाषा में देश शब्दों में ये बतलाओ ये तुमने क्या सुना। हमें स्त्री बुद्धि बहुत स्थूल बुद्धि है, मैं कुछ समझ सकता, मेरी समझ में ये सब कुछ आया नहीं, मुक्ति क्या है और सब क्या चीज है तो मेरी समझ में आया। हम लोगों में भी हम लोग कुछ अधिकांश ऐसे ही हैं, कुछ लोग फिर ब्रह्म बिठाते हैं। परीक्षित महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हमने जो भागवत सुना सुखदेव गोस्वामी से इसका सार हमने यही समझा कि ब्रज के जो गोपी लंपट कृष्ण है उनके चरणों में हमारी वैसी ही भक्ति हो जाए जैसे गोपियों की कृष्ण में भक्ति प्रेम, बस यही उसका सार है। गोपियों में कृष्ण में गोपियों का कृष्ण में ये मेरे प्राण बल्लभ है कृष्ण, चाहे जैसे भी हो हमारे भी वो प्राण प्रियतम। अब यहां एक विचार करने की बात है, ये परीक्षित महाराज जी की मैया का नाम है पुष्पा, कृष्ण से इनका क्या संबंध है, कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा और सुभद्रा जी के लड़के अभिमन्यु अर्जुन अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी है, तो इनके कृष्ण क्या लगेंगे मम्मी ससुर लगेंगे। वो ससुर को कह रहे हैं परीक्षित महाराज उनके बेटे होकर के गोपियों के जो परम लंबट है जो कृष्ण है वो तुम्हारे प्राण प्रियतम पति जैसे पति ऐसे भी पति तो एक है ना ज्यादा में लंपट हो वो तुम्हारे प्राण प्रियतम हो, शादी हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, गोपियों से जैसे उनकी शादी नहीं रही तभी प्राण प्रियतम रहे, ऐसे ये कृष्ण चंद्र के प्रति तुम्हारी यही भावना रहे कि तुम्हारे प्राण प्रियतम है और गोपियां भी हमारी आराधना देवी और उन गोपी ने जो श्रेष्ठा श्रीमती राधिका जी है वो जो सर्वोत्तम कृष्ण की है उनकी मैं जन्म जन्मांतर के लिए सब समय के लिए नित्य में उनकी बेमोल की दासी बन जाऊं।
ये तुम भागवता ये सार, ये भागवता का जो अपनी मैया को निर्लज्ज होकर के भी जो नहीं करनी चाहिए वो भी बात उन्होंने स्पष्ट करके हमको बताया। यदि श्रीमद् भागवत सुन करके हम लोग के हृदय में यह भावना आए ये उन गोपियों के जो प्राण प्रियतम है वो भी हमारे प्राण प्रियतम हो, हमें जन जन मान करके ये विभोर राधा जी की दासी हो जाए तो ये श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम परीक्षित को क्या हुआ। परीक्षित जी ने जब मैया को जब सुना दिया एक छोटा सा इतिहास सुनाया तो वो हम लोगों ने पहले बहुत वर्णन किया है उस सबका साथ ही मैंने ये सुनाया। कृष्ण के जितने भी रूप हैं, कृष्ण के जितने भी भाव हैं, गोपियों के भी जितने भाव हैं उनमें सर्वोत्तम वही भाव जो अभी मैंने बतलाया। परीक्षित महाराज जी मैया को बतला करके भैया जब दूर हो गई अब देखा जब समय मेरा आ गया तो एकदम बैठ के चित्त को एक बात और समाधि हो गए, शरीर से मन और इंद्रियों को निकाल लिया और मन इंद्रियों से अपनी आत्मा को निकाल दिया और आत्मा को देखा गया। उस भागवत में वर्णन नहीं है किंतु अब हमारे टीकाकारों से और परीक्षित महाराज जी के विचार से ऐसा मालूम होता है समाधि होकर के उन्होंने देखा कि मैं बहुत सुंदरी कोई रोगी हूं। राधा और कृष्ण वृंदावन में विराजमान सेवा कुंज में वो है और श्रीमती राधिका जी को मना रहे हैं, राधिका जी भी मुस्कुरा रहे हैं और अपने सिद्ध शरीर से एकदम इसी को फैलने लगा मैं बहुत सुंदर हूं। और मैं कृष्ण की बेमोल थी, मैं दासी पाल्य दासी एकदम चित्त को उनमें लगाया और चुपचाप है शरीर में आप प्राण नहीं रहा, प्राण से भी अलग कर दिया, प्राण भी स्थूल है, मन भी स्थूल है, अहंकार भी बुद्धि भी स्थूल है, इन सब से भी अतीत कर दिया और स्थित कर दिया रहा है जिनके चरण। इसी समय में तक्षक किसी माली के फूलों में इतने में एक ब्राह्मण आ रहा था जिसका नाम था कश्यप, वो आ रहा था परीक्षा राज्य को सांप दर्शने वाला है मैं उसी सभा में चलू और जब तक्षक काट देगा मैं साथी साथ में मंत्र औषधि के द्वारा उनको जीवित करके जगत को दिखला दूंगा यह हमारे मंत्र में कितनी शक्ति है। जब वो निकट में आ गया तो तक्षक ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और इनके पास में गया, बोले आप कहां जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं परीक्षित की सभा। किसलिए जा रहे हो। जा रहा हूं इसलिए परीक्षित महाराज को सप्त दसने वाला मैं मंत्र की औषधि की शक्ति जगत को दिखलाऊंगा, एक सेकंड में उनको जिंदा करके खत्म कर। बोले तुम नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है, ब्राह्मण का विशाल है, तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने देख जरूर करूंगा, अवश्य में वो करूंगा, यदि सूर्य का पश्चिम में उगना संभव है तो वो हो सकता है किंतु हमारी मंत्र और हमारा औषधि अव्यक्त है। अच्छा तो देखो ये बात करो तो मैं ही वक्त रख सकू और ये विशाल वृक्ष को मैं अभी काटता हूं और ये जल करके भस्म हो जाएगा जड़ समय मूल समय, तुम इसको जीवित कर दो तो मैं समझ अच्छा ठीक है तुम करो। बस उसने बड़े क्रोध से और तम तमा कर और अपने फण से उनको मारा, मारते ही एक सेकंड के अंदर में वृक्ष एकदम जल करके मूल समय ध्वंस हो गया, एकदम भस्म हो गया। शक्ति ने कहा है ये तो सचमुच मोहित अक्षर है,
ठीक है, बस अपना मुंह झोला उतारा और उतार करके उसमें जड़ियां देखनी और उसे फोक दिया और फोक करके मंत्र पढ़ा, उच्चारण किया और उस होती हुई औषधि को लेकर के जहां पर वृक्ष की जड़ थी सब भस्म हो गया, वहीं पर लेकर के मंत्र पूछ करके फेंकने के साथ ही साथ में एकदम बट वृक्ष जैसा का तैसा उसमें से निकला कोपले अंकुर निकला, अंकुर होकर के सेकंड में बढ़ गया और मिनटों में एकदम विराट वृक्ष का एकदम जैसा का तैसा सब निकाल के देते, सब कुछ जी ला देगा उनको। कहे प्रभु मैं आपके शरण ब्राह्मण का वचन पूछा है, आप तो पैसे के लिए जा रहे हैं ना, रुपये के लिए जा रहे हैं, ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बदला दिया था उन्होंने, नंदी नंदीश्वर ने अभी संपाद किया जिसमार्क ब्राह्मण लोग पैसे के लिए अपना धर्म कर्म सब कुछ बेच रहे, बस मोतियों और सखियों की हीरा जवाहरातों का सोने के थाल में भर कर उनके सामने रख, या तो आप ले लें और लेकर के लौट जाइए और नहीं लेंगे तो आपका भाग्य आपके साथ ही, उनको जिला कर कहीं क्या करेगा वो राजा आपको थोड़ा ही इतना कहते हैं उसकी मती, और वो अपने पद से भ्रष्ट होकर के और वो सब लेकर के वहीं से बेचारे चलू कि न चलू लू कि न, किंतु यह दुष्ट मन बस उसको विचलित कर दिया और वो लौट करके इतने में आकाशवाणी हुई, अरे जो भी ब्राह्मण तुमने मंत्र और यह औषधियों को विक्रय कर दिया, आज से तुम्हारी विद्या निष्फल, अब तुम्हारी विद्या कहीं भी नहीं, इसके बाद चला गया और ये प्रसन्न होकर के लौट आया, कुल में प्रवेश कर लिया और उन्होंने अपने समाधि में अपने शरीर से आत्मा को और एक दम लेकर के वृंदावन में निकाल करके वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में सेवा कुंज में राधा कृष्ण के चरण में पहुंच गए। इधर में सर्प ने देखा जब समय आ गया बस उनके सूखे हुए शरीर को जैसे सूखे हुए वृक्ष होते हैं उसमें बड़े जोर से निकल करके और रूप धारण करके और सब कुछ बस शरीर में एकदम आग लग गई, अच्छा घर में उस मरे हुए शरीर को सूखे शरीर को उसने जला करके परिचित महाराज जी उसने पहले ही निकल चुके उनका कुछ भी ये आत्मा अजर है अमर है, ये शरीर सब समय मरा, ये वस्त्र के समान ये तो मरा हुआ सब समय, इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस शरीर के लिए शोक न करेंगे, यथा लाभ उसी में संतुष्ट रह करके भगवान का करेंगे। हम लोग आठ नौ दिनों में आपके एक एक व्यक्ति जो जितने भी यहां पर हैं या स्त्रियां हैं पुरुष हैं हमने आप लोगों को एक एक भागवत दिया, ये सुनाना मैंने क्या है, एक एक भागवत को दिया आप लोगों को, आप लोग हमको कुछ देने के लिए हम लोगों को देने के लिए कोई प्रयास न करेंगे, आप लोग हम लोगों को कुछ भी नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम आप लोगों को जो भागवत दें इतने दिनों में दिया है उस भागवत को एक एक प्रति आप अपने साथ में ले जाए और उस भागवत को जो हमने आप लोगों को दिया उसको प्रतिदिन पढ़ने उलाटिए और इन कथाओं को याद रखें, तब तो मैं समझूंगा कि हम लोगों का भागवत देना ये सार्थक। आप लोग अधिक से अधिक कुछ कपड़े पैसे रुपए ये दे देंगे, सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही छूट चुके हैं, उनको इन सब चीजों से क्या मतलब है, आप लोगों ने दिया हम लोग दूसरों को दे देंगे, ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, हम लोगों के लिए ये जो पहने हैं ओढ़े हैं लंगोटी हमारी वो हमारे लिए काफी, किंतु यदि हमारे इस परम धर्म को आपने ग्रहण कर लिया है, भागवत का सार राधा जी को आपने यदि ग्रहण कर दिया है, जिन लोगों ने हरि
महामंत्र और मंत्र नहीं लिया है, दीक्षा नहीं लिया है, वो भागवत पद्धति के अनुसार में श्रीमद ये दीक्षा ग्रहण करें, भगवान का भजन करें, और जो हम लोगों ने ले लिया जो भागवत बस कृष्ण की जितनी भी लीलाएं उनको पढ़िए समझिए, आप लोगों का जीवन प्राप्त हो जाएगा यदि हम लोगों की नहीं लिए। यही भागवत का सार श्रीमद् भागवत ने स्वयं ही बतलाया। पत्र कृति सुश्री पत्र श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर हृदय शब्द हृदय महामुनि व्याप्ति ने जो ये श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया जगत में पुराण रूपी स्तुति को प्रकाश किया और शास्त्रों को कोई जरूरत नहीं, इसके श्रवण से जो हम आपको भागवत दे रहे हैं इसका प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर मनन करेंगे या करेंगे, इसके श्रवण करने से इसके पठन पाठन करने से एक ऐसी दिव्य चिंतामणि चिंतामणि में गए तो वो बहुत बहुत कुछ है, श्रीमद् भागवत की उसे तुलना नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत यदि थोड़ी सी श्रद्धा के साथ में सुधी श्रद्धा पूर्वक हम सुनने की इच्छा रखते हैं तो और ऐसे सुन करके क्योंकि भी प्रेम के साथ में यदि उनको श्रवण करें भगवान बड़े बड़े ऋषि लोग जिनके चरण कमलों का ध्यान में भी चिंतन नहीं कर पाते वो भगवान का तत्क्षणात् वशीभूत हो जाएंगे, ये असंभावी है। भक्ति देवी भी निर्जीव हो गई थी, उनके पुत्र भी दुबले पतले और बूढ़े हो गए, जब आए वृंदावन में तो भक्ति देवी तो नौजवान हो गए और लड़के बूढ़े हो, क्यों? कर्म ज्ञान योग तपस्या इत्यादि का वृंदावन में आदर नहीं है, इसलिए ज्ञान बढ़ाएंगे तो बूढ़े रह गए क्योंकि यहां पर कोई पूछता नहीं, और भक्ति देवी परम नवीन किशोरी बने। इस तरह से आप लोग भी यदि भक्ति करी रहेंगी तो ज्ञान बढ़ाएंगे उनका पुत्र भी रहेगा, और भक्ति नहीं रहेगी तो ज्ञान बढ़ाएगा तो कोई एक कौड़ी भी मूल्य नहीं है, ये श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत का ये तात्पर्य है कि जिसके स्वर्ण मात्र से ही श्रद्धापूर्वक यदि कोई सुने तो कृष्ण तत्क्षणात् राधा जी के साथ में प्रसिद्ध, ये इसका मूल फल, और नहीं कालिदास उनके कालिदास के राजा विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास इत्यादि नौ रत्न थे, एक दिन कोई वो खोपड़ी ले लिए हुए कोई और खड़ा गया कपा निकला गया, उसने एक खोपड़ी दिखलाई बोले जैसे ये मूर्ख था कि बुद्धिमान था ये बतलाओ, महाराज के समझ में नहीं आया, कालिदास उपस्थित नहीं थे कोई भी बतला नहीं सका, अरे मूर्खों इसके लिए तुम लोग कहता है कि बुद्धिमान है ये नहीं बतला सका जे ये मूर्ख था कि ये बुद्धिमान, मैं चलता हूं ये कहते थे दो चार उनको उलाहना देता हूं वहां से इतने में कालिदास आ महाराज जी ने कहा महाराज आप लौट आइए जरा कि इसकी भी बात तो सुन ले। उन्होंने कालिदास से पूछा जे भाई ये जिसकी खोपड़ी है बहुत पुरानी सुखी हुई ये बुद्धिमान था या बुद्धा? ठीक एक डंडी ले आओ, नारियल बाल की झाड़ू होती है और पत्नी से ले आओ सीख सीख ले आओ सीख कान में दिया, कान में दिया तो उस पार हो गए, ये डबल मूर्ख था क्योंकि घर से सुना इधर में यदि इधर में आकर के यदि सीख देने से यदि भीतर में आ जाए तो समझ सकता है सब लोग देख करके कालिदास
बुद्धि की तारीफ कर।
उसी प्रकार से वैष्णव लोग प्रति ये सब परीक्षा करते हैं, ये भागवत सुना कहां सुना, क्या सुना, क्या सुना, वो यहां पर भी हाथ नहीं रखेंगे, देख करके ही बदला देंगे जिसने सुना कि नहीं सुना। पहले हमने जो बतलाए याद रखेंगे तब तो सुनना हुआ, हमें तो सुनना नहीं होगा। परीक्षित की मैया ने सुना, परीक्षित जी ने सुना, सनातन सनक सनंदन सनातन इत्यादि नारद जी ने इसको सुना। ऐसे ही आप लोग सुनने की चेष्टा करेंगे आप लोगों का जीवन सार्थक। देवता देवियों को आदर देना है ये बात तो ठीक है, उनको आदर दे, एक चींटी को भी आदर देना, यही श्रीमद् भागवत का संदेश। समस्त प्राणियों में भगवान को देखो और समस्त प्राणियों को भगवान में देखेंगे तो ठीक है, किंतु कृष्ण के स्थान में और किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए राधा जी और कृष्ण के, हमारे हृदय के वही सिंहासन पर बैठे और सबको सम्मान होंगे, ये श्रीमद् भागवत का। एक और बात है, भागवत सुनने से भी नहीं होगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब जो मादक द्रव्य है, धूम्रपान इनको, प्याज लहसुन सफेद आलू बाजार में आजकल बहुत सस्ता बिक रहा है, उधर मत देखिए, अंडे गोश्त इत्यादि की तरफ मत जाइए, शुद्ध सदाचार रख करके भगवान का सुनेगा। यदि आहार शुद्ध नहीं हुआ तो कभी भी विचार शुद्ध नहीं होगा, इसलिए आहार शुद्धि भी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया पहले द्वितम पान जुआ मत खेलो। आजकल गवर्नमेंट ही लॉट भी सिखला रही है, आप लोग उधर में मत जाइए नहीं तो एक दिन में दबाला निकल जाएगा, रास्ते के खतील हो जाएंगे, पहले दो पैसा मिलेगा और अंत में सब कुछ चलाएगा, चित्त चंचल हो जाएगा, भागवत नहीं सुन सकेंगे। इसलिए दूतम पान मन मदिरा इत्यादि पान अवैध स्त्री सन समस्त माताओं को स्त्रियों को माता बहन या कन्या उनके प्रति कभी भी दृष्टि बढ़ता नहीं तो यह सब कुछ सर्वनाश हो जाए। और कृष्ण के चरणों में जैसे मैंने कहा ये कृष्ण के स्वरूप है श्रीमद् भागवत, तमादिदेवम तरुणाधिधानम कमाल वर्णन सुहितावतार अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूप। सेतु पर कहें पुल को अभी हम लोग समाप्त करेंगे और तुरंत यहां पर अभी हवन कार्य होगा और हवन कार्य के बाद में ठाकुर जी का विवेदिक प्रसाद सब लेकर के करते हैं, ऐसे मत चले जाए। अब दो एक मिनट में मैं समाप्त कर, ये श्रीमद् भागवत जो है वो कृष्ण के स्वरूप है, उनसे कम मत देखना। और ये कैसे हैं, पुल है, पुल किसको कहते हैं, सेतु को पुल कहते हैं। पुल कहां पर होता है, इस पार से उस पार जाना है कहां पर पुल की जरूरत है, तो ये नदी क्या है, अपार संसार समुद्र, अनंत काल से हमारा जन्म हो रहा है और जन्म होता रहेगा, मरण भी होता रहेगा, ये अपार समुद्र है। उस सेतु के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है चढ़ने का जाने का, वो सेतु क्या, सेतु माने दो वस्तुओं को मिलाती है, वो सेतु है, उस पार को इस पार से जोड़ देती है, तो ये सेतु है। उस पार मैंने राधा कृष्ण की सेवा और इधर में क्या है, भोग संसार है, इन दोनों को जोड़ देती है। और नौका में जाएंगे ना पैसा लगेगा, पैसा देकर के जाना पड़ेगा, और पुल से पार हो जाएंगे पैसे पैसे की जरूरत, नौका जाएगी समय से, और पुल पर क्या है, जब ही आओ तभी पार करते जाओ, भीड़ भाड़ का नहीं रहेगी, और नौका में यदि नौका डूब गई तो मुश्किल हो जाए। इस देश में भागवत शादी उस पर, किंतु पुल के पास ही में एक व्यक्ति खड़े हैं, वो कौन है? गुरुदेव जी खड़े। बिना गुरु का कोई नहीं जाएगा, तो जिनको गुरु नहीं है या उनके लिए तो मुश्किल है, वहीं पर रोक देंगे। वहीं पर जम के दूत भी आए, बैकुंठ के दूत, दोनों प्रकार के दूत दोनों तरफ में खड़े हैं। एक तो पहले ही जम के दूत उन लोगों को रोक लेंगे, और आगे यदि बढ़ेंगे तो वो पासपोर्ट देखना चाहेंगे, कौन? विष्णु के दूत। उसे भी पार कर गए ना तो ब्रज के गोपीश्वर महादेव जी खड़े हैं, बस बैकुंठ तक रहो, आगे मत बढ़ो, बैकुंठ में रुकना। ब्रज में कौन जाएगा? गोपियों की जिन पर कृपा है, श्रीमद् भागवत की यथार्थ कृपा जिन पर है, केवल वही उधर में जा सकेंगे। और सब दरी में, कोई इस देवी धाम में, कोई सिद्ध लोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई अयोध्या धाम में, कोई गोलोक में, कोई द्वारका में, कोई मथुरा में, सब रोक लिए जाएंगे। बस बहुत कम गिनती वाले लोग वृंदावन में जाने पर भी कोई गोकुल में रह जाएंगे, कोई नंदगांव में रहेंगे, कोई कोई बिरले व्यक्ति ही वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन के पास में राधा कुंड में राधा कृष्ण की नित्य सेवा में। ये भागवत का समय, यदि इसमें आप लोगों की थोड़ी सी भी रुचि का उत्पादन हो गया तो समझे ये तुम्हारा भागवत श्रवण करना कितना, ये भागवत का फल। कभी भूल करके भी भागवत से धन धान्य, पुत्र कन्या संपत्ति, मुक्ति इत्यादि, वैकुंठ की भक्ति मत मानना, बस राधा जी के चरण में हमारी एकांतिक रूप में सेवा प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त और कुछ और भी भागवत के बहुत महत्व है, मैंने संक्षेप में सबका सार और सर्वोत्तम भागवत का महत्व आप लोगों के सामने पर रहे। आप लोग इसको ग्रहण करेंगे, भागवत एक एक पोथी आप लोग अपने हृदय में, वो हाथ में नहीं आएगी, वो पोथी अपने हृदय में बहुत सुंदर रूप से रख करके ले, आप प्रतिदिन इसकी सेवा बस इसी से भागवत का समर्थ करें। आज मैं ही पत्र समाप्त करता हूं, आप लोग अभी यहां पर आरती होगी, भागवत की आरती करके और वही जाकर मैंने प्रार्थना सुनाया है, ऐसी प्रार्थना करके फिर यहां पर अभी हवन होगा। हम में सभी लोग कम से कम एक एक दो दो या चार चार आहुति देकर के धीरे धीरे भीड़ न हो आहुति देकर के प्रसाद वहां पर ब्रह्मचारी लोग रहेंगे, प्रेमानंद जी और लोग हैं, इसकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा बस कभी जल्दी जाए, इन लोगों की इच्छा है जब हम लोग वस्त्र देंगे, ये तो जल्दी से उठा लो, हमें उनका एक एक नाम पुकारते जाओ।